ओम शांति। आज अपने इस छठे दिन अपनी इस यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञानदाता कौन है। ये कितने आश्चर्य की बात है कि आज मनुष्य मात्र को यह भी नहीं मालूम कि परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव, जिन्हें हम ज्ञान का सागर कल्याणकारी मानते हैं, वह कौन है। भारत में यद्यपि गीता ज्ञान को भगवान द्वारा दिया हुआ ज्ञान माना जाता है, जो आज भी सभी लोग सही मानते हैं, गीता गाया श्री कृष्ण के द्वापर युग के अंत में युद्ध के मैदान में अर्जुन के रथ पर सवार होकर दिया गया ज्ञान है। गीता ज्ञान द्वापर युग में नहीं दिया गया था, बल्कि संगम युग पर दिया गया है। ये बात बहुत ही अद्भुत है कि वास्तव में गीता ज्ञान निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने दिया है, और फिर गीता ज्ञान से सतयुग में श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। अतः गोपेश्वर परमपिता शिव श्री कृष्ण के भी पारलौकिक पिता हैं और गीता श्री कृष्ण की माता है। यह तो सभी जानते हैं कि गीता ज्ञान देने का उपदेश पृथ्वी पर धर्म की पुनः स्थापना का उपदेश है। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि मैं अधर्म का विनाश तथा सतयुग की स्थापना करने के लिए आता हूँ। अतः भगवान ने अवतरित होने तथा गीता ज्ञान देने के बाद जो धर्म की तथा देवी संभाल वाले संप्रदाय की पुनः स्थापना करी है, परंतु सभी जानते हैं और मानते हैं कि द्वापर युग के बाद तो कलयुग की शुरुआत हुई थी, तो धर्म की अधिक हानि हुई और मनुष्य का स्वभाव तमुर प्रधान अथवा आसुरी हो गया है। तो भगवान ने गीता ज्ञान द्वापर युग में नहीं बल्कि इस समय लिखी है। क्या गीता ज्ञान देने के बाद अधर्म का युग प्रारंभ हुआ? स्पष्ट यह है कि उनका विवेक इस प्रश्न को का उत्तर न शब्द से ही देगा। भगवान ने अवतरण होने के बाद कलयुग का प्रारंभ मानना तो भगवान की ग्लानिंग करना है, अर्थात भगवान का यथार्थ परिचय तो यह है कि वह अवतरण होकर पृथ्वी को आसुरों और आसुरी खेलों से बचाते हैं, और यहाँ धर्म का पूर्ण कलाओं सहित स्थापन करके तथा नर को श्री नारायण मनुष्य की सदगति कराते हैं। भगवान की सृष्टि के बीज रूप है, तो स्वरूप में इस धरती पर उनके आने के पश्चात ही सृष्टि वृक्ष इत्यादि सतयुगी सृष्टि की स्थापना होती है। इसके अतिरिक्त यदि द्वापर के अंत में गीता ज्ञान दिया गया तो कलयुग के तमुर प्रधान काल में तो सभी प्रारब्ध ही होना चाहिए। आज भी हाँ आप सीखते हैं कि दिवाली के दिन श्री लक्ष्मी का आह्वान करने से भारतवासी अपने घरों को साफ सुथारते हैं, दीपक जलाते हैं, और इससे स्पष्ट है कि अपवित्रता और अंधकार वाले स्थान पर जो देवता अपने चरण भी नहीं धरते हैं। अतः श्री कृष्ण का अर्थात श्री लक्ष्मीपति श्री नारायण का जन्म द्वापर में मानना महान भूल है। उनका जन्म तो सतयुग में हुआ था और उनके सभी सभी मित्र संबंधी प्रकृति प्रधान सतु प्रधान एवं दिव्य थे और सभी का आत्मरूपी दीपक जलाया हुआ था। अतः इससे स्पष्ट है कि श्री कृष्ण ही द्वापर में हुए, श्री कृष्ण ही द्वापर युग में हुए और ना कि श्री गीता ज्ञान द्वापर युग के अंत में दिया गया, बल्कि निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने कलयुग के अंत में सतयुग के आदि के संगम समय पर दुर्गम इस ग्लानी के समय पर ब्रह्मा के तन में आकर दिव्य ज्ञान दिया। गीता ज्ञान देकर सतयुग की श्री कृष्ण श्री नारायण के स्वराज्य की स्थापना की, और श्री कृष्ण के तो अपने माता पिता शिक्षक थे, परंतु गीता ज्ञान सर्व आत्माओं के माता पिता शिव ने दिया। आज परमात्मा के दिव्य स्वरूप, दिव्य जन्म और रथ के स्वरूप को न जानने कारण लोगों की ये मान्यता दृढ़ है कि गीता ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ पर सवार होकर लड़ाई के मैदान में दिया था। आप ही सोचिए, जबकि अहिंसा को धर्म का परम लक्षण माना गया है, जबकि धर्मात्मा अथवा महात्मा लोग न हो अहिंसा का पालन करते, अहिंसा की शिक्षा देते, तब क्या भगवान न भला किसी हिंसक युद्ध के लिए किसी को शिक्षा देते? जबकि लौकिक पिता भी अपने बच्चों को यह शिक्षा देते हैं कि परस्पर ना लड़ो, तो ये सृष्टि के परमपिता शांति के सागर परमात्मा ने मनुष्य को परस्पर लड़ाया होगा? यह तो कदापि नहीं हो सकता। भगवान तो देवी स्वरूप, देवी स्वभाव वाले संप्रदाय की सर्वोत्तम धर्म की स्थापना करने गीता ज्ञान देते हैं, और उससे तो मनुष्य राग, द्वेष, हिंसा, क्रोध इत्यादि पर विजय प्राप्त करता है। अतः वास्तविकता यह है कि निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने इस सृष्टि पर, शिष्य रूपी कर्म क्षेत्र पर, कुरुक्षेत्र पर, प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर रूपी रथ के पर सवार होकर माया अर्थात विकारों पर युद्ध किया। परंतु लेखन में यह बताया है और चित्र में भी बताया है कि शरीर को रथ के रूप में अंकित करके प्रजापिता ब्रह्मा की आत्मा को भी उस रथ में एक मनुष्य अर्जुन के रूप में चित्रित किया है। बाद में वास्तविक रहस्य लुप्त हो गया और स्थूल अर्थ ही प्रचलित हो गया। संगम युग में भगवान शिव ने जब प्रजापिता ब्रह्मा के तन में इस रथ में अवतरित होकर ज्ञान दिया, धर्म की स्थापना की, तब इसके पश्चात कलयुगी सृष्टि का महाविनाश हो गया और सतयुग स्थापन हुआ। अतः सर्व महान परिवर्तन के बाद यह वास्तविक रहस्य सामने आया। फिर जब द्वापर युग में भक्ति काल में गीता लिखी गई, बहुत पहले संगम में यह हो चुका था और इसका रूपांतर व्यास ने वर्तमान काल का प्रयोग करके किया, तो समय अनुसार समयांतर में गीता ज्ञान को ही व्यास के जीवन काल में अर्थात द्वापर युग में दिया गया। ज्ञान मान लिया और यह भूल संसार की सबसे बड़ी भूल थी। अब गीता ज्ञान निराकार शिव परमपिता परमात्मा ने दिया, जो श्री कृष्ण के भी पारलौकिक पिता हैं। सभी धर्मों के अनुयायी ने परम पूज्य तथा इसके एकमात्र सदगति दाता और राज्य भाग्य देने वाले एक शिव ही हैं। हम शिव जयंती मनाते हैं, गीता जयंती नहीं मनाते। गीता जयंती को शिव जयंती के रूप में भी मानते हैं। वह एक ज्योति रूप निराकार परमपिता परमात्मा शिव से योग युक्त होकर पावन बन जाते हैं और उससे सुख शांति की पूर्ण विरासत लेते हैं। परंतु आज उपयुक्त सर्वोत्तम रहस्यों को ना जानने के कारण गीता माता के पिता सर्वमान्य निराकार परमपिता शिव के स्थान पर गीता पुत्र श्री कृष्ण देवता का नाम लिख दिया है, और जिसके कारण ये अनर्थ हो रहा है। आज फिर से उपयुक्त रहस्य को जानकर परमपिता शिव से योग युक्त होने से पुनः इस भारत में श्री कृष्ण अथवा श्री लक्ष्मी नारायण का सुखदायी स्वराज स्थापन हो चुका है और हो रहा है। इसमें ही और सौंदर्य के प्रभाव के कारण आज मनुष्य को घर में घर जैसा अनुभव नहीं होता। एक मामूली कारण से घर का पूरा वातावरण बिगड़ जाता है। अब मनुष्य की वफादारी पर दाग लग चुका है, नैतिक मूल्य उसके स्तर से काफी गिर चुके हैं। कार्यालय हो या व्यवसाय, घर हो या रसोई, अब हर जगह संबंधों को सुधारने, स्वयं को उसमें ढालने और मिलजुल पर चलने की जरूरत है। अपनी स्थिति को निर्दोष एवं संतुलन बनाए रखने के लिए हर मानव को आज बहुत मनोबल इकट्ठा करने की आवश्यकता है और इसके लिए योग बहुत ही सहायक है। जो ब्रह्म कुमार है वह दूसरों को शांति का मार्ग दर्शाने एक सेवा अथवा अपना कर्तव्य समझते हैं। ब्रह्म कुमार जन जन को ये ज्ञान दे रहे हैं कि शांति पवित्र जीवन का फल एक है और पवित्रता एवं शांति के लिए परमपिता परमात्मा का परिचय और उनके साथ मान का नाता जोड़ना जरूरी है। अतः वह उन्हें राजयोग केंद्र अथवा ईश्वरीय मनन चिंतन केंद्र पर पधारने के लिए आमंत्रित करते हैं, जहां उन्हें ये आवश्यक ज्ञान दिया जाता है कि राजयोग का अभ्यास कैसे करें और जीवन को कमल पुष्प के समान कैसे बनाएं। इस ज्ञान और योग को समझने का फल यह होता है कि कोई कार्यालय में काम कर रहा है या रसोई में कार्यरत है या मनुष्य शांति के सागर परमपिता परमात्मा के साथ स्वयं का संबंध स्थापन कर सकता है। इस समय का श्रेष्ठ परिणाम यह होता है कि सारा परिवार प्यार और शांति के सूत में पिरोया जाता है और सभी वातावरण में आनंद एवं शांति का अनुभव करते हैं और अब वह परिवार एक सुख शांति संगठन परिवार के रूप में है। दिव्य ज्ञान के द्वारा मनुष्य विकार तो छोड़ देता है और गुण धारण कर लेता है, इसलिए जिन मनोबल की जरूरत होती है वह मनुष्य को योग से मिलता है। इस प्रकार मनुष्य अपने जीवन को कमल पुष्प के समान बनाने में लग जाता है। कमल की यह विशेषता है कि वह जल में रहते हुए भी जल से न्यारा और प्यारा रहता है। हालांकि कमल के अन्य संबंधी जैसे कमल ककड़ी, कमल डोडा इत्यादि, परंतु फिर भी कमल उन सभी के से ऊपर उठकर रहता है। इसी प्रकार हमें अपने संबंधियों और मित्रजनों के बीच में रहते हुए भी न्यारा और मोहजीत बनना है। कुछ लोग कहते हैं कि गृहस्थ में ऐसा होना असंभव है, परंतु हम देखते हैं कि अस्पताल में नर्स अनेक बच्चों की संभाल करती है लेकिन मोह रहित होती है। इसी प्रकार हमें चाहिए कि परमपिता परमात्मा के इस यज्ञ में अपने व्यवहार को बदले। एक न्यायाधीश भी खुशी या गम के निर्णय सुनाता है, परंतु वह स्वयं को प्रभावहीन नहीं होने देता। ऐसे ही हम सुख और दुख की परिस्थिति में साक्षी होकर रहें और सहज राजयोग सीखने की आवश्यकता है। संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने के लिए शीघ्र ही आध्यात्मिकता और उन्नति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को राजयोग के अंतर और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। अतः चलते फिरते कार्य व्यवहार करते वे परमात्मा की स्मृति में स्मृत होने की जरूरत है। यद्यपि निरंतर योग से बहुत लाभ है और निरंतर योग द्वारा ही मनुष्य सर्वोत्तम अवस्था को प्राप्त करता है, तद्यपि विशेष रूप से योग में बैठकर बैठना आवश्यक है। इसलिए चित्र में दिखाया है कि परमात्मा को याद करते समय हम बुद्धि सब तरफ से हटाकर एक ज्योति बिंदु परमात्मा शिव से जुटानी चाहिए। मन चलचल होने के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अथवा शास्त्र और गुरु की तरफ भागता है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसको हम एक परमपिता परमात्मा की याद में स्थित कर सकते हैं। अतः देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलकर आत्मरूप में स्थित होना, बुद्धि में ज्योति बिंदु परमात्मा शिव की स्नेह युक्त स्मृति को जगाना, यही राजयोग है। कई मनुष्य योग तो बहुत कठिन समझते हैं। मैं कई प्रकार के हाथ क्रियाएं और प्राणायाम करते हैं, लेकिन वास्तव में योग अति सहज है। जैसे एक बच्चे को अपने देहधारी पिता की सहज ही याद आती है और स्वतः ही वो याद कर लेता है, ऐसे ही हमें यह सोचना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति बिंदु परमपिता शिव की अविनाशी संतान हूँ, जो परमपिता ब्रह्मलोक के वासी हैं, शांति के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, मैं उनकी संतान हूँ। ऐसा मनन करते हुए मन को ब्रह्मलोक में परमपिता शिव पर स्थित करना चाहिए और परमात्मा के दिव्य गुणों और कर्तव्यों का ध्यान करना चाहिए। जब मन में इस प्रकार की स्मृति में स्थित होना बहुत ही सहज हो जाता है, तब सांसारिक संबंधों अथवा वस्तुओं का आकर्षण अनुभव नहीं होता। आज बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा मन परमात्मा की स्मृति में नहीं टिकता अथवा हमारा योग नहीं लगता, क्योंकि हम आत्मनिश्चित होकर नहीं बैठते हैं। आत्मनिश्चय में स्थित नहीं होते। आप जानते हैं कि जब बिजली के दो तारों को जोड़ना होता है, तब उसके ऊपर के रबर को हटाकर करंट आता है। इसी प्रकार यदि कोई निज देह के भयन को भूलकर परमात्मा को याद करता है, तो तभी उससे उसका तार जुड़ता है। दूसरी बात यह है कि वे परमात्मा को नाम रूप से न्यारा और सर्वव्यापक मानते हैं। वे मन को कोई ठिकाना भी नहीं दे सकते, परंतु अब तो ये स्पष्ट है कि परमात्मा का दिव्य नाम शिव है, दिव्य रूप ज्योति बिंदु और दिव्य धाम परम धाम है। अतः मन का ठिकाना बहुत सहज हो जाता है। तीसरी बात यह है कि उन्हें परमात्मा के साथ अपने घनिष्ठ संबंध का परिचय नहीं है, इसी कारण उन्हें वो याद नहीं रहता। वास्तव में योग का अर्थ है ज्ञान के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर, सर्वशक्तिवान पतित पावन परमात्मा शिव के साथ आत्मा का संबंध जोड़ना ही ज्ञान है, योग है, ताकि आत्मा को भी शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति और दिव्य गुणों की आदत हो। योग के अभ्यास के कारण उसे आचरण संबंधी कुछ नियमों का अथवा दिव्य अनुशासन का पालन करना है, क्योंकि योग का उद्देश्य मन को शुद्ध करना, दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, मनुष्य के चित्त को सदा प्रसन्न हर्षित रखना। दूसरे शब्द में योग की उच्च स्थिति किन्हीं आधार मूर्त स्तंभों पर टिकी है। इसमें से एक है ब्रह्मचार्य या पवित्रता। योगी शारीरिक सुंदरता या भासना भोग की ओर आकर्षित होता है, जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी दृष्टिकोण बदल जाता है। वह आत्मा की सुंदरता को ही पूर्ण महत्व नहीं देता। उसका जीवन ब्रह्मचार्य शब्द के वास्तविक अर्थ में ढलना है, अर्थात उसका मन ब्रह्म में स्थित होता है। वह देह की उपेक्षा विदेही आत्माभिमानी अवस्था में रहता है। अतः वह सबको भाई भाई के रूप में देखता है और आत्मिक प्रेम व संबंध का ही आनंद लेता है। यह आत्मिक स्थिति और ब्रह्मचार्य इसे ही महान शारीरिक शक्ति, कार्य क्षमता, नैतिक बल और आत्मिक शक्ति देते हैं। यह उसके मनोबल को बढ़ाता है और उसे निर्णय शक्ति, मानसिक संतुलन और कुशलता देता है। दूसरा महान महत्व है, स्तंभ है, सात्विक आहार। मनुष्य जो आहार खाता है उसे उसके मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए योगी मांस, अंडे, पेय और तंबाकू नहीं लेते। अपना पेट पालने के लिए अन्य जीवों की हत्या नहीं करते हैं। वे पहले भगवान को भोग लगाते हैं, तब प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। भगवान द्वारा स्वीकृत वह भोजन उनकी मन की शांति और पवित्रता देता है। जैसा अन्न वैसा मन, कहावत सिद्ध होता है। तीसरा स्तंभ जो है वो है सत्संग। जैसे संग वैसा रंग। इस कहावत के अनुसार योगी सदा इस बात का ध्यान रखते हैं कि सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा के साथ का संग ही बना रहे। वह कभी भी कुसंग में अथवा बुरे विचारों में ना फंसे। वह एक ही प्रभु किसकी याद में लीन रहे। चौथा स्तंभ है दिव्य गुण। योगी सदा अन्य आत्माओं को भी अपने गुण, दिव्य गुणों, विचारों तथा तव्य दिव्य कर्मों कि सुगंध की अगरबत्ती की तरह सुगंधित करता है, ना कि आसुरी स्वभाव विचार और कर्मों के वशीभूत होता है। विनम्रता, संतोष, हर्षित मुक्ता, गंभीरता, अंतर्मुखता, सहनशीलता और अन्य दिव्य गुण योग का प्रमुख आधार है। योगी स्वयं को इन गुणों को धारण करता है और साथ ही अन्य दुखी भूली भटकी अशांत आत्माओं को गुणों का दान देता है, उनके जीवन को सच्ची सुख शांति प्रदान करता है। इन नियमों को पालन करने से मनुष्य सच्चा योगी जीवन बिता सकता है तथा रोग, शोक, दुख, अशांति सभी भूतों के बंधन से छूट जाता है। राजयोग के अभ्यास से अर्थात मन का नाता परमपिता परमात्मा से जोड़ने से अविनाशी सुख शांति की प्राप्ति होती है। हमें शक्तियां मिलती हैं और उसमें से 8 मुख्य और महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। इसमें से सबसे पहले सिकुड़ने और फैलने की शक्ति है। जैसे कछुए अपने अंगों को जब चाहे सिकुड़ लेता है और जब चाहे फैला लेता है, वैसे ही राजयोगी जब चाहे अपनी इच्छा अनुसार कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करता है और जब चाहे विदेही होकर शांत हो जाता है। दूसरी शक्ति है समेटने की शक्ति। इस संसार को अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि व्यवहारिक जीवन में वह इतना तो विस्तार कर लेता है कि अपने कार्य बुद्धि को समेटना चाहता है और फिर भी नहीं समेट पाता है, जबकि योगी अपनी बुद्धि से इस विशाल दुनिया में ना फैला होने के कारण परमपिता परमात्मा में अपनी बुद्धि को स्थित कर लेता है। वह कलयुगी संसार से अपनी बुद्धि और संकल्पों का विस्तार व पेटी समेट कर सदा अपने घर परमधाम में चलने के लिए तैयार होता है। तीसरी शक्ति है सहन शक्ति। जैसे वृक्ष पर पत्थर मारने से वे हमें मीठा फल देता है और उपकार करने वाले पर भी उपकार करता है, अपकार करने वाले पर भी उपकार करना ये सहन शक्ति का प्रतीक है। चौथी शक्ति है समाने की शक्ति। योग के अभ्यास से मनुष्य की बुद्धि विशाल बनती चली जाती है। मनुष्य गंभीरता और मर्यादाओं का गुण धारण करता है। थोड़ी सी खुशियां, मान पद पाकर अभिमानी नहीं बनता, वह समुद्र की तरह सब कुछ समा लेता है, अपने दैवी कुल की मर्यादा में बंधा रहता है। गंभीर अवस्था में रहकर दूसरों आत्माओं को अवगुणों को ना देखते हुए केवल उनके गुणों को धारण करता है। जो अगली शक्ति है वो है परखने की शक्ति। जैसे जौहरी हीरे को परख लेता है, ऐसे ही हम बच्चे सच्चाई या झूठ को आसानी से परख सकते हैं। तो सदा सच्चे ज्ञान रत्नों को ही अपनाएं, अज्ञानता के झूठे कंकड़ पत्थरों में अपनी बुद्धि को ना फंसने दें। जो अगली शक्ति है वो है निर्णय शक्ति। निर्णय शक्ति हमें परमात्मा ही देते हैं। वह व्यर्थ संकल्पों और परचिंतन से मुक्त होकर सदा शुभ चिंतन में लगाने को ही कहते हैं। और आखिरी शक्ति है सामना करने की शक्ति। यदि उसके सामने कोई निकट संबंधी की मृत्यु, आपदा आ जाए तो भी वो अपने आप को विचलित ना करे और अन्य आत्माओं को ज्ञान प्रकाश देता रहे। इसी प्रकार से हमारे अंदर है सहयोग की शक्ति, ईश्वरीय सेवा की शक्ति, तन मन धन से करने की शक्ति, जिस कारण से कलयुगी पहाड़ को उठाने में अपने पवित्र जीवन रूपी उंगली देकर स्वर्ग की स्थापना के पहाड़ समान कार्य में सहयोगी बनते हैं। राजयोग की इस यात्रा से स्वर्ग की ओर दौड़, राजयोग के निरंतर अभ्यास से मनुष्य को अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं। इन शक्तियों के द्वारा ही मनुष्य सांसारिक रुकावटों से पार अपने आध्यात्मिक मार्ग की तरफ चलता है। आज मनुष्य अनेक प्रकार के रोग, शोक, चिंता और परेशानियों से ग्रस्त है। इससे निकलकर स्वर्ग में जाना हरेक प्राणी चाहता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उसके रास्ते में मुख्य बाधा डालते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग में ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा सहज राजयोग की शिक्षा देकर हमें हमारे पांच विकारों से जीतना सिखाते हैं। नरक से स्वर्ग में जाने के लिए पहले पहले मनुष्य को काम विकार की ऊंची दीवार को पार करना पड़ता है, जिसमें नुकीले शीशे की बाड़ लगी होती है। सको पार करके वह देह अभिमान के कारण सफलता को नहीं प्राप्त करता है, लेकिन अपनी आईज को उसे पवित्र दृष्टि बनानी है। दूसरे भयंकर विघ्न है क्रोध, जो अग्नि चक्र के रूप में दिखाया है। क्रोध के वश में आकर वो सब कुछ जला देता है। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, विकारों का समावेश हो जाता है और इस बाधा से वो स्वधर्म में स्थित नहीं हो सकता। लोभी मनुष्य को सतपथ पर चलने नहीं देता। लोभी मनुष्य को कभी भी शांति नहीं मिलती। स्वर की प्राप्ति के लिए मनुष्य को धन व खजाने की लालच नहीं करनी चाहिए, उस आकर्षण से परे रखना है। मोह भी एक ऐसा बंधन है जो मनुष्य को बांध कर रखता है। कड़े बंधन वंश अपने धर्म व कार्य को भूल जाता है। नष्ट मोह हमें बनना है, इस मोह के जाल से भी बाहर निकलना है। अहंकार भी मनुष्य की उन्नति में बाधा डालता है। अहंकारी मनुष्य कभी भी परमात्मा के निकट नहीं पहुंच सकता। अहंकार के वश मनुष्य पहाड़ की ऊंची चोटी से गिरकर सब कुछ चकनाचूर कर देता है। अतः स्वर्ग में जाने के लिए अहंकार पर भी जीत पानी है। अतः याद रहे कि इन विकारों पर विजय प्राप्त करके मनुष्य से देवता बनना ही हमारा लक्ष्य है, वरना हरेक व्यक्ति के मरने के बाद जो ये देख रहे हैं वह स्वर्गवासी हुआ, ये सरसा गलत है। यदि हर कोई मरने के बाद स्वर्ग जा रहा होता है तो जन्म संख्या कम होनी चाहिए। स्वर्ग में भीड़ होती ही नहीं है। मृतक के संबंधी मातम नहीं मनाते हैं। तो इस प्रकार हमने आज अपने आप को जाना, अपने इस राजयोग के जीवन को जाना, अपनी इन शक्तियों को जाना, इन स्तंभों को जाना जिनके ऊपर ये राजयोग टिका हुआ है, अपनी इस राजयोग के आधार और विधि को जाना कि कैसे निरंतर योग के साथ हम अपने परमात्मा से जुड़ सकते हैं, कैसे परमात्मा ने गीता ज्ञान इस संगम पर दिया ना कि द्वापर पर। इन सभी बातों को हम अपने मनन में, अपने चिंतन में रखेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।